संसार में दो चीजें अनुभव में आती, जिसको शास्त्र ने दो भागों में विभक्त किया है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ किसे कहते हैं? इस देह को अभी अभी वाणी जड़ करके कहते हैं, और इस जड़ देह को जो जीवित रखे हुए हैं वो कहते हैं वो तेरा असली स्वरूप, उस स्वरूप को तो संभाल। तो संसार में जितनी भी चीजें नजर आती हैं वो सब की सब जड़ है। जो इंद्रियों के अनुभव में चीजें आती हैं वो सारी की सारी जड़ है। जड़ में एक्टिविटी तो होती है, उसमें क्रिया तो होती है, लेकिन उसमें चेतनता नहीं होती, होश नहीं होती। वो कुछ भी जान नहीं सकता, जो जड़ वस्तु है वो कुछ भी जान नहीं सकता। लेकिन इस जड़ के साथ हमको चेतन भी नजर आता है, जैसे कि मेरी देह तो जड़ है लेकिन मैं चैतन्य हूं, मैं चेतन हूं, अर्थात मैं देह के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ जान सकता हूं। तो ये जो जानने वाली शक्ति है इस देह के अंदर, इसको चेतन कहते हैं। इसके अंदर होश है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो जड़ और चेतन ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन हम इन दोनों को एक करके देखते हैं, यह हमारा है। तो सारे शास्त्र इसी भ्रम को दूर करने के लिए बड़ा ही बारीक विश्लेषण वो हमारे सामने रखा करते हैं। जैसे कि मान लिया मैं हूं तो जड़, देह करके तो मैं जड़ ही हूं, लेकिन देह करके अपने आप को समझता हूं चेतन, लेकिन मेरी चेतनता कितनी है? अभी मैं सड़क पर जा रहा हूं, एक ठोकर लगती है, मैं गिर जाता हूं, गिरकर बेहोश हो जाता हूं। बेहोश होने पर क्या मुझको इस देह का होश रहता है? इस देह की मैं कोई क्रिया नहीं कर सकता। जब तक होश में हूं, अर्थात देह के प्रति मैं चैतन्य हूं, तभी तक इस देह की क्रिया कर सकता हूं। लेकिन बेहोश होने के पश्चात भी मेरी देह के अंदर हजारों प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। दिल धड़कता रहता है, श्वास चलती रहती है, और सारी एक्टिविटी जो देह के अंदर है जरूरी, तो सब होती रहती है। जब होश में आता हूं उस समय फिर मेरे अंदर वही अहंकार आ जाता है कि मैं ही अपनी देह के लिए सब कुछ किया करता हूं। मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे अलावा कोई दूसरी भी तो चेतन सकता थी, मेरे बेहोश होने पर भी वो देह की रक्षा कर रही थी। सब कुछ उसको नहीं थी। मुझको यदि वो जीवात्मा कहते हैं तो उस चेतन सत्ता को जो सबकी देह की रक्षा करती है उसको वो परमात्मा कहते हैं। मुझको यदि वो पुरुष कहते हैं तो उस चेतन सत्ता को पुरुषोत्तम कहते हैं। दो नाम उन्होंने इन दो सत्ताओं के अलग अलग रख रखे, लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूं। अपने आप को तो मैं इस देह का मालिक समझता हूं, ईश्वर को इस देह का मालिक नहीं समझता, क्योंकि मेरे बारे में सत्य यह है ईश्वर इस देह का मालिक है, मैं इस देह का मालिक नहीं हूं, ये सत्य है मेरे पास। तो ये सत्य हमारे दिमाग में टिका रहे, इसीलिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, गहरा अंतर मनन करना पड़ता है, ताकि बुद्धि से मेरा यह अहंकार निकले कि मैं इस देह का मालिक हूं। और इसकी जगह ये ज्ञान आ जाए ईश्वर की सब कुछ है, उसी के कारण सृष्टि चल रही है, उसी के कारण मेरी देह चल रही है, उसी के कारण मेरे अंदर होश बना हुआ है। वास्तव में सारी सृष्टि में यदि कोई चेतन सत्ता है तो केवल वो एक ईश्वर की चेतन सत्ता है, उसके अलावा चेतना नाम की वस्तु सारी सृष्टि में कहीं भी नहीं। इसी बात को दर्शाने के लिए गीता में तीन श्लोक आते हैं 15वें अध्याय में 7, 8 और 10। मैं इनका थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं ताकि हम भी इसी के अनुसार सोचना शुरू करें और ये विचार हमारे अंदर हर समय बना रहे। 7वां श्लोक है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी। अब देखिए वेदव्यास का लिखा है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव लोक में अर्थात संसार में जो जीव रूप शक्ति भोक्ता कर्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है वो मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश है। जीव लोक में अर्थात संसार में जो जीव रूप शक्ति कर्ता और भोक्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है, जैसे मैं समझता हूँ मैं करता हूँ, इस देह से जो कर्म होते हैं उसका कर्ता मैं अपने आप को मानता हूँ और जो वस्तुएं इस देह के द्वारा मैं भोगता हूँ उसका मैं अपने आप को भोगता समझता हूँ। इसलिए कहते हैं जो जीव शक्ति अपने आप को भोक्ता कर्ता इत्यादि नामों से जानती है वो मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश है। सनातन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वो जीव का अस्तित्व बिना ईश्वर के कभी हो ही नहीं सकता। मेरा अस्तित्व ईश्वर के बिना संभव ही नहीं है। इसके लिए वेद व्यास यहां पर दो जगदगुरु शंकराचार्य यहां पर दो उदाहरण लिख रहे हैं, इसको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी से ये सिद्ध होता है, ये पता लगता है, ये मनन करने का तरीका पता लगता है हमको कि कैसे मेरा अस्तित्व बिना ईश्वर के है ही नहीं। पहला, जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश, जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्मा का ये अंश भी उस परमात्मा से ही संयुक्त हो जाता है फिर नहीं लौटता। मान लिया मेरे सामने धूप में 10 कटोरे रखे हुए, उन 10 कटोरों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ, ऊपर सूर्य चमक रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि कटोरे के अंदर भी छोटे छोटे सूर्य, सब कटोरों में एक एक सूर्य चमक रहा है। अब यहां जो उदाहरण दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि सूर्य एक है, सूर्य एक है, वो असली सूर्य प्रकाश उसी में, प्रकाश यदि है तो केवल उसी सूर्य में है जो एक जो आसमान पर चमक रहा है। लेकिन जो कटोरों में 10 कटोरों में 10 सूर्य है, प्रकाश उनमें भी है, लेकिन क्या वो प्रकाश उनका अपना है, वो सूर्य का ही प्रकाश है। और वो जो कटोरे के अंदर सूर्य चमक रहे हैं वो उस सूर्य के ही अंश है। वो कह रहे हैं कि जल रूप निमित्त का नाश होने पर वो सूर्य का जो अंश है वो सूर्य को ही प्राप्त हो जाता है फिर नहीं हो। तो ये जीव अपने आप को उस सूर्य से अलग कर कर क्यों देख रहा है, यहां सूर्य का मतलब परमात्मा, उस परमात्मा से ये जीव अपने आप को अलग करके देख रहा है कि मैं स्वतंत्र चैतन्य शक्ति। जबकि जिस प्रकार जो सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है वो जल रूपी निमित्त के कारण नजर आ रहा है। जैसे ही जल खत्म होगा ये सूर्य का जो अंश है ये भी सूर्य में विलीन हो जाएगा। तो वास्तव में वो अलग अस्तित्व तो है ही नहीं, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार सतपुरुष कहते हैं कि इस देह रूपी निमित्त के कारण तू अपने आप को ईश्वर से अलग अनुभव कर रहा है, क्योंकि वास्तव में तेरा अस्तित्व ईश्वर से अलग है ही नहीं। इसीलिए यहाँ गीता कह रही है कि जीव मेरा सनातन अंश। तो सनातन अंश किस रूप में है? सनातन अंश इस रूप में नहीं है कि जीव की स्वतंत्र सत्ता है। सनातन अंश इस रूप में है कि जब तक जीव अपने आप को देह के संग समझ रहा है, अपने आप का अस्तित्व तो अलग समझ रहा है, जब तक ये समझ रहा है तब तक ये ईश्वर का सनातन अंश है। लेकिन ये इसका भ्रम है। तो मनुष्य जन्म इसलिए दिया गया, उन्हें इस रहस्य को समझना है कि तू खुद सूर्य ही है, सूर्य से अलग तेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, जैसे घट आदि उपाधि से परिच्छिन्न अर्थात घिरा हुआ घटादि का आकाश आकाश का ही अंश है, और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर आकाश को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, जय वैसे ही इसके विषय में भी समझना चाहिए। और दूसरा भाव दिया कि मान लिया आपका घड़े रखे हुए, घड़े आपके सामने रख दिए जाए, तो घड़ों के अंदर खाली घड़े हैं, तो उनके अंदर जो खाली जगह है उसको आकाश कहा जाता है। घड़े के अंदर आकाश है उसको घटाकाश भी कहते हैं। लेकिन क्या वो आकाश उसका कोई अलग अस्तित्व है? ये जो बाहर का जो खाली स्थान है ये भी आकाश है। तो इस आकाश का अंश है उस घड़े के अंदर जिसको घटाकाश कह रहे हैं। तो घटाकाश अलग प्रतीत होते हुए यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तब यही समझ आता है कि ये कोई अलग आकाश पैदा नहीं हुआ, ये जो बाहर आकाश है ये वही आकाश है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब तक घड़ा मौजूद है तब तक वो अलग आकाश हमको नजर आता है। इसी कहते हैं घड़े के निमित्त के कारण ये घटाकाश हमको नजर आता है या प्रतीत होता है। तो जैसे ही घड़ा टूटेगा फिर क्या होगा? निमित्त जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही बाहर का आकाश और अंदर का आकाश पहले भी एक ही था, अलग वो प्रतीत हो रहा था, वास्तव में कभी अलग था ही नहीं। इसीलिए वो दोनों एक हो जाते हैं, फिर वो कभी नाश नहीं होता। तो उसी प्रकार ये जीवात्मा जब ये देह रूपी घट के अहंकार से मुक्त हो जाती है, जैसे ही ये देह के अहंकार से जीवात्मा मुक्त होती है तुरंत ही यही ईश्वर रूप हो जाती है, क्योंकि कभी ये ईश्वर से अलग थी ही नहीं, इसका ईश्वर से अलग अस्तित्व था ही। इसीलिए उस अपने स्वरूप को में स्थित होने का नाम ही मोक्ष है, उस अपने स्वरूप को जानने का नाम ही ज्ञान। इसी के लिए इस श्लोक की रचना, इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक की रचना वेद व्यास ने गीता में की। अगला श्लोक क्या कहते हैं? शरीरम यत अवाप्नोति यत चा अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशा। अर्थात कहते हैं जब ये देह का स्वामी जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तब कहते हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से यानी पुष्पादि से गंध को लेकर जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर से मन सहित छह चीजों को साथ ले। तो छह चीजें कौन सी हैं? एक मन और पांच ज्ञान। कान देखने में पता लगता है कि ये कान सुनता होगा, लेकिन कान केवल एक गोलक है, एक स्थान है जहां इंद्रिय का निवास है, जहां इंद्रिय की एक्टिविटी है। वास्तव में कान इंद्रिय नहीं है, क्योंकि कान तो मरने के पश्चात भी देह के साथ जला दिया जाता है, लेकिन इंद्रिय सूक्ष्म है, उसी प्रकार सूक्ष्म है जिस प्रकार की मन सूक्ष्म है। मन नहीं चलता, वो कहते हैं ये जीवात्मा मन सहित पांचों इंद्रियों को अपने अंदर आकर्षित कर लेता है और आकर्षित करके पुनः नए शरीर में ये क्रिया शुरू कर देता है। और ये क्रिया किस प्रकार होती है, यहां उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार वायु पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हो और पूरब दिशा में कोई रात रानी का पेड़ खड़ा हो तो वो रात रानी की गंध आपकी नासिका तक पहुंच जाए। वो गंध पुष्प की है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये वायु बड़ी सुगंधित है। गंध पुष्प की है क्योंकि उसका आरोपण हम वायु में कर रहे हैं। उसी प्रकार जो मन देह इंद्रियों के विकार है उसका आरोपण हम जीव पर कर देते हैं, जीवात्मा पर कर देते हैं, या मैं अपने ऊपर कर देता हूं कि ये मेरे विकार है, मेरे को। जबकि जीव वास्तव में निर्गुण है, उसी प्रकार निर्गुण है जिस प्रकार वायु गंध रहित है। वायु के अंदर यदि गंध है तो वो पुष्प के कारण है, वायु की अपनी गंध कोई भी नहीं। उसी प्रकार जीव के अंदर कोई भी गुण नहीं है, वो उसी प्रकार निर्गुण है जिस प्रकार ईश्वर निर्गुण, वो उसी प्रकार निराकार है जिस प्रकार ईश्वर निराकार। लेकिन जीव के अंदर चेतना है, चेतना ही जीव की पहचान है और वो चेतना भी उसकी उधार ली हुई है, वो चेतना भी ईश्वर की देन है। क्यों? क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर के अलावा तो जीव का अस्तित्व ही नहीं। लेकिन मैं कितना अहंकारी हूं कि मैं सारी दुनिया से अलग हटके मैं अपना अस्तित्व अलग करके देखा, कि मैं सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ हूं या सारे मनुष्यों में बुरा हूं, ये सारे जो है गुण दोष का आरोप मैं अपने ऊपर कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को देह से एक करके देख रहा हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं वायु को गंध के साथ एक करके देख, केवल ज्ञान दृष्टि से पता लग रहा है कि गंध का वायु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। गंध पुष्प की है, वायु से तो सारे शास्त्रों की रचना इसी वास्ते की जाती है कि ये जो मैं गलतियां करता हूं, ये जो गहरे अज्ञान में फंसा रहता हूं, ये अज्ञान मेरा किसी प्रकार विचार के द्वारा, मनन के द्वारा, विवेक के द्वारा ये अज्ञान मेरा हट जाए, कमजोर पड़ जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ये ईश्वर की रचना क्यों की, इसलिए कि वो कहते हैं कि जिस समय ये मनुष्य देह त्याग करता है, मनुष्य का मतलब यहाँ जीव से, जिस समय ये जीवात्मा इस देह का त्याग करती है, उस जीवात्मा ने इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है कि अपने साथ अपनी ये पांच ज्ञान इंद्रियों को और अपने मन को आकर्षित करके अपने संग ले जाती है और नई देह का प्रभु इसका निर्माण करते हैं। उसके अंदर यही मन, यही ज्ञान इंद्रिया काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए बचपन से ही देखा है हमें कि हर बच्चा संस्कार लेकर पैदा होता है, वो संस्कार पूरे जन्म के होते हैं, क्योंकि मन वही उसका नए देह में आ रहा है। अभी इसने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन संस्कार उसके अंदर होते हैं। इसीलिए ये अब वो तीसरी बात लिख रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुने ताकि ये जो बात गीता सिखाना चाह रही है इस 15वें अध्याय के माध्यम से वो बात हम सीख सकते। 10वां श्लोक, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विदूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। उत्क्रामंतम, कहते हैं उत्क्रमण करते हुए को, अर्थात पहले प्राप्त किए शरीर को छोड़कर जाते हुए। जीवात्मा पहले वाले शरीर को छोड़कर जाती है ना, उसको ही उत्क्रामंतम कहा गया। कहते हैं कि पहले प्राप्त किए शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित रहते हुए, जीवात्मा शरीर में स्थित भी है, शरीर को छोड़कर जाती भी, या शब्द आदि विषयों का भोग करते हुए को, जीवात्मा पांच ज्ञानेन्द्र के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच विषयों का भोग करती है। उसके लिए कहते हैं कि या शब्दादि विषयों का भोग करते हुए को, या सुख दुख मोह आदि गुणों से युक्त होते हुए को भी, ये जीवात्मा सुख दुख और मैं देह हूं इस मोह को धारण करके भी इस देह में स्थित रहती है, यानी इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर होते हुए भी इस आत्मा को मूढ़ लोग, विमूढ़ा न अनुपर्शन, मूढ़ लोग जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषय भोगों की लालसा के बल से चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण अनेक प्रकार से मोहित हो रहे हैं, नहीं देखते। जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वो इस जीवात्मा को नहीं देखते जो इस शरीर में स्थित है, जो इस शरीर से निकलकर जाती है, या इस शरीर में रहते हुए सुख दुख और मोह से ग्रस्त है। तो उन्हें सुख दुख तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिनके अंदर ज्ञान चक्षु है वो इसको देखते हैं। गुरु यदि आपके सामने बैठा है तो गुरु आपको शरीर करके नहीं देखते, गुरु आपको जीवात्मा करके देखते, ये गुरु दृष्टि है। वो सदैव इस जीव को ही देखता है, जीव से ही गुरु का संबंध होता है। इस जीव को ही सुख दुख और मोह के बंधन से मुक्त करने के लिए वो उसका मार्गदर्शन करता है। तो ये जो शास्त्र वचन है, ये गुरु वचन ही तो है। ये वचन हमको क्या सिखा रहे हैं कि मन, इंद्रियां, देह और संसार, इसके मोह में जो मैं फंसा हुआ हूं, इसके अज्ञान में जो मैं फंसा हुआ हूं, इससे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए ये ज्ञान वो मेरे सामने पेश है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो दृष्ट और अदृष्ट विषय भोगों की लालसा के बल से चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण अनेक प्रकार से मोहित हो रहे हैं, वो नहीं देखते। ये बड़े दुख की बात है, इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट। तो देखिए कैसा एक एक चीज ये शास्त्र खोला है इन तीन श्लोकों के माध्यम से। फिर देखें कि जो प्राप्त मुझको शरीर है, जब मैं इस शरीर को छोड़कर जाता हूं तो लोग मुझको नहीं देखते कि मैं जा रहा, बल्कि लोग उस देह को ही देखते। इस शरीर में रहते हुए जब मैं इन भोगों को भोगता हूं तो मुझको भोगते हुए भी नहीं देखते, वो शरीर ही भोग रहा है, मुझको शरीर करके ही देखते। और सुख दुख मोह में इस शरीर में रहते जो ग्रस्त रहता हूं उसको भी वो नहीं जानता, मुझको तो वो देखते ही नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है। मूढ़ कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को देह करके स्वयं ही देखते हैं, मुझको बिना देखे कैसे देखेंगे। लेकिन कहते हैं जो ज्ञानी है, जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है, वो मुझको फिर जीव करके देखता है, या फिर वो ईश्वर का अंश करके देखता है। इसीलिए मैंने अपने आप को इस रूप में देखना, इस ज्ञान चक्षु से देखना है कि मैं जीवात्मा हूं, अपने ही मन और इंद्रियों के बंधन में हूं, और देह तो मात्र एक खोल है जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये किसी पर भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए इस देह के अंदर मेरे अलावा जो चेतन सत्ता मौजूद है, जिसको कि परमात्मा कहते हैं, जिसको कि ईश्वर कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, इस जीवन का रक्षक, इस देह का रक्षक वो परमात्मा है, वो इस देह में उपस्थित है। मैंने इस मन इंद्रिय और देह के बंधन से, उस परमात्मा के पद से मुक्त होना है। मुक्त कैसे होता हूं? मैंने इंद्रिय बंधन से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करनी, देह के मोह से धीरे धीरे इन शास्त्रों के विवेक के द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी है, और सुख दुख का जो मोह मेरे अंदर है उससे मैंने मुक्ति प्राप्त करनी है। निरंतर मैंने ईश्वर की याद करनी है, गुरु के बताए हुए अनुसार मैंने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। यदि मैंने ये काम जीते जी किया तो मेरा ये जन्म सफल है। फिर ये शास्त्र का पढ़ना, सत्संग का श्रवण करना, ये मेरा सफल। ओ जन्म सफल।